ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके मूकङ्ग्रतिवाचालं पिङ्गलङ्गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम्। अजं श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद इसमें अध्याय श्लोक नंबर 11, 12 और 13 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। तो मैं पहले 11 और 12 नंबर श्लोक का पाठ और उसका अनुवाद पढ़ लेता हूं, उसके बाद हम 13वां श्लोक का पाठ करेंगे। वार्तायं लुप्यमानायं आरब्धायं पुनः पुनः लोभाभिभूतनिषत्व परार्थे कुरुते स्पृहम्। जब उसे अपनी जीविका में प्रतिकूल फल मिलते हैं तो वह बारंबार अपने को सुधारने का यत्न करता है, किंतु जब उसके सारे प्रयास असफल रहते हैं और वह विनष्ट हो जाता है तो वह अत्यंत लोभवश वह अन्यों का धन स्वीकार करता है। कुटुंब भरणाकल्प मंद भाग्यो वृथोद्यम श्रिया विहीन कृपणो धायं श्मशीति मूढ़ी। जब वह अभागा अपने परिवार वालों के भरण पोषण में असफल होकर समस्त सौंदर्य से विहीन हो जाता है तो वह सदैव लंबी लंबी आहें भरता हुआ अपनी विफलता के विषय में सोचता है। अब हम 13वां श्लोक का पाठ कर रहे हैं। एवं स्वभरणाकल्पम् तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वम् कीनाशायैव गोचरम्। एवं स्वभरणाकल्पम् तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वम् कीनाशायैव गोचरम्। एवं स्वभरणाकल्पम् तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वम् कीनाशायैव गोचरम्। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। उसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर उसकी पत्नी तथा अन्य लोग उसे उसी तरह पहले जैसा सम्मान नहीं प्रदान करते। जिस तरह कंजूस किसान अपने बूढ़े तथा थके बैलों के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता। तात्पर्य, इसी युग में नहीं अपितु अनादिकाल से अपने परिवार में कोई भी ऐसे वृद्ध पुरुष को नहीं चाहता जो कमाता नहीं। यहां तक कि वर्तमान युग में कुछ जातियों अथवा राज्यों में बूढ़ों को बीस दे दिया जाता है, जिससे वे जितनी जल्दी हो सके मर जाएं। कतिपय मानव भक्षी जातियों में बूढ़े बाबा को खेल खेल में मारकर उसके मांस की दावत दी जाती है। यहां पर उस किसान का उदाहरण दिया गया है जो अपने उस बूढ़े बैल को नहीं चाहता जिसने काम करने के लायक नहीं रह गया है। इसी प्रकार से परिवार से संबंध व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है और कमा नहीं सकता तो उसे ना तो उसकी पत्नी पुत्र पुत्रियां चाहते हैं ना ही परिजन। फलस्वरूप उसकी उपेक्षा होने लगती है। आदर करने की बात तो दूर रही। अतः यह लाभप्रद होगा कि वृद्धावस्था प्राप्त होने के पूर्व ही पारिवारिक संबंध तोड़ दिया जाए और भगवान की शरण ग्रहण की जाए। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को भगवान की सेवा में लगा दें, जिससे वे उसका भार अपने ऊपर ले सकें और इस तरह वह मनुष्य अपने स्वजनों से उपेक्षित ना हो। जय श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कंद राधा कंत नमस्तुत। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विशवानसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavat ke in shlokon mein इस संसार में व्यक्ति जब वृद्धावस्था को प्राप्त करता है और उस समय परिवार के भरण पोषण में असमर्थ होता है तो उस समय उसकी स्थिति का वर्णन किया गया है। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति भौतिक संसार में भगवान की माया से ग्रस्त होकर वो अपने दिव्य स्वभाव को भूल जाता है और इस संसार में भोग के प्रति आसक्त होता है। यही वस्तुतः हमारे संसार बंधन का कारण है। कृष्ण भूलि जाई जीव भगवंश करे निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। कृष्ण को भूलकर जो जीव भोग की कामना करता है तो निकट स्थित माया का वशीभूत हो जाता है और भगवान की यह माया शक्ति जीव को यह भुला देती है कि जीव दिव्य है, भगवान का अंश है और यह भुलाकर जीव को यह शरीर प्रदान करती है जिससे कि जीव एक भौतिक शरीर को प्राप्त होता है और इस भौतिक शरीर को प्राप्त होकर वो सोचने लगता है कि मैं यह शरीर हूं और यह शरीर से संबंधित मेरी पत्नी पुत्र कन्या आत्मीय स्वजन ये सब मेरे हैं और मैं जो कुछ भी धन संपत्ति कमा रहा हूं ये सब मेरे भोग के लिए उद्दिष्ट है। इस प्रकार व्यक्ति मोहित होकर इस संसार बंधन में बंध जाता है और कब उसकी मृत्यु आ जाती है वो उसके संबंध में सोच नहीं पाता है, जान नहीं पाता है कि कब मृत्यु काल उपस्थित हो जाता है। तो यही व्यक्ति का भ्रम है कि व्यक्ति किस प्रकार इस भौतिक संसार में अपने आत्म तत्व को भूलकर इस शरीर सर्वस्व होकर भोग के लिए संसार में बार बार जन्म लेता है और बार बार कष्ट को भोग करता है और प्रति जन्म में यह कष्ट भोग करने के उपरांत भी व्यक्ति भूल जाता है कि पिछले जन्म में हमने इतने कष्ट भोग किए हैं, इस जन्म में हमें कष्ट नहीं भोग करना है, इस जन्म में हम कैसे इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है, इसके लिए प्रयास करना है। व्यक्ति इसको भूल जाता है और पुनः 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 चरवित चर बनाना, ये बार बार चबी हुई वस्तु को फिर चबाकर उससे आनंद प्राप्त करना चाहता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हम कभी ईख का चर्वण करते हैं, चूसते हैं, उससे रस निकालते हैं और उससे आनंद को प्राप्त होते हैं और चबा चबा करके जब उसका रस समाप्त हो जाता है हम उसको फेंक देते हैं, किंतु बाद में और कोई आएगा उससे और रस निकालने के लिए या वही व्यक्ति बाद में वो चाहेगा फिर उस ईख को चबा करके चूस करके उससे रस निकालने के लिए तो उससे कहां रस निकलेगा, उससे रस समाप्त हो चुका। तो पुनः पुनः चर्वित चर्वणानं, चर्वित की हुई वस्तु, चबी हुई वस्तु से बार बार चबा करके रस निकालने का प्रयास जिस प्रकार व्यर्थ है उसी प्रकार इस भौतिक संसार में भोग का प्रयास करना और उस भोग से आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करना व्यर्थ है। वस्तुतः इस संसार में कोई भी व्यक्ति वास्तविक भोग या आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। जो भी आनंद या भोग हम प्राप्त करते हैं वो अस्थाई क्षण स्थाई सुख है, थोड़े समय के लिए है, और उस सुख के पीछे अनंत दुख है। तो व्यक्ति अनंत दुख होने के कारण व्यक्ति संसार में कष्ट भोग करता है। थोड़े सुख के लिए व्यक्ति अनंत दुख को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है, यही उसकी मूर्खता है। वो विचार नहीं करता है कि ये थोड़े से सुख के लिए मुझे इतना दुख क्यों स्वीकार करना है। यदि कोई दुख स्वीकार करे और अनंत सुख के लिए वो दुख स्वीकार करे या कष्ट स्वीकार करे तो वो स्वीकार्य है। यदि हम अनंत सुख किसमें प्राप्त करते हैं उसके लिए थोड़ा सा कष्ट करें तो वह स्वीकार्य है, किंतु व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करता। जिस भगवान कृष्ण की सेवा करने पर अनंत सुख प्राप्त होता है उसके लिए थोड़ा सा कष्ट करना, भगवान की भक्ति के लिए भगवान की सेवा के लिए थोड़ा सा कष्ट करके अनंत सुख का अधिकारी होना, ये सांसारिक लोगों को स्वीकार नहीं, इसलिए उनको मूर्ख कहा गया। ये उनकी मूर्खता है। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में वस्तुतः बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। तो उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो व्यक्ति इस नश्वर शरीर को प्राप्त होकर, जो नश्वर शरीर अस्थाई है अनित्य है, इस शरीर को प्राप्त होकर इसी जन्म में मैं जो अमृत हूं, जे मोई जो नित्य सत्य और आनंदमय हूं, तो मुझे जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है इसी जन्म में वही व्यक्ति वस्तुतः बुद्धिमान है। किंतु जो व्यक्ति इस नश्वर शरीर को प्राप्त होकर उसी नश्वर वस्तु को प्राप्त होने के लिए प्रयास करता है, अनित्य वस्तु को प्राप्त होने के लिए प्रयास करता है, तो उस व्यक्ति से मूर्ख अविवेक और कोई नहीं है। तो ये जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में अपनी स्थिति को नहीं जान सकता और थोड़े से सुख लाभ के लिए सुख के पीछे, जिसको माया मरीचिका कहा गया है, जिस प्रकार रेगिस्तान में मरुभूमि में व्यक्ति जल को प्राप्त होने के प्रयास में वो दौड़ता रहता है इधर उधर, जबकि उसको लगता है कि जैसे आगे जल है, किंतु वो नहीं जानता है कि वो मरीचिका है, वो वहां जल नहीं, यद्यपि जल जैसा प्रतीत हो रहा है। कभी कभी हम देखते हैं कि गर्मी के दिन में इस रोड पर हम जाते हैं, लगता है कि जैसे आगे पानी है, किंतु वहां पानी नहीं है। तो उसी प्रकार रेगिस्तान में ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पानी नहीं है किंतु पानी जैसा प्रतीत होता है। तो व्यक्ति उस पानी को प्राप्त करने के लिए, जल को प्राप्त करने के लिए उसी की दिशा में चलता है। ऊपर धूप है और बालू गर्म है, उसमें चलते हुए जल की आशा से अनेक दूर जाने के पश्चात देखता है जल नहीं, फिर निराशा होती, फिर इतस्तत देखता रहता है कहां जल है, फिर दिखाई पड़ता है और कहीं जल दिखाई पड़ रहा है, फिर उसकी ओर चलता है। इस प्रकार इधर उधर चलते हुए कहीं भी उसको जल प्राप्त नहीं होता, निराशा ही प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार यह भौतिक संसार है, जहां सुख रूपक जो माया मरीचिका है उसके पीछे दौड़ते हुए हमें वस्तुतः कहीं सुख प्राप्त नहीं होता, केवल सुख का आभास मात्र होता है। और इस प्रकार सुख के पीछे दौड़ते हुए बार बार इस भौतिक संसार में हम जन्म लेते हैं और केवल प्रति जन्म में हम दुखी वो करते हैं, सुख के नाम पर दुखी वो करते हैं। और विशेष रूप से जो 84 लाख जीव योनियां हैं, इन 84 लाख जीव योनियों में भ्रमण करते हुए हर जन्म में दुख भोग करते हुए हम जब मनुष्य का जन्म प्राप्त कर लेते हैं, तो यह मनुष्य जन्म एक ऐसा जन्म है जिस जन्म में हम अपने दुख को अनुभव कर सकते हैं और दुख से मुक्त होने का प्रयास कर सकते हैं। यह अवसर इस मनुष्य जन्म में ही प्राप्त है, अन्य जन्मों में ऐसा अवसर प्राप्त नहीं। पशु पक्षी यह अनुभव नहीं कर सकते कि वो दुख में है या कष्ट में है। जिस प्रकार आप लोग जानते हैं कि बृहस्पति के श्राप से किस प्रकार इंद्र को शुकर जन्म मिला था, जो इंद्र स्वर्ग का सुख भोग कर रहे थे, तो किस प्रकार शुकर जन्म में विष्ठा भक्षण करके आनंद में रह रहे थे। और ब्रह्मा जी जब आए उनका दुख देखकर, उनको उनके स्वरूप बताने के लिए कि वो कैसे स्वर्ग के इंद्र थे, श्राप व शुकर का जन्म लिए हैं, उनको स्वर्ग लौट जाना चाहिए, तो शुकर रूपी इंद्र पूछते हैं ब्रह्मा जी, क्या स्वर्ग में विष्ठा प्राप्त होता है? तो विष्ठा उनको इतना प्रिय हो गया है शुकर जन्म में कि उनमें ये अंतर नहीं पता चलता कि स्वर्ग में जो अमृत प्राप्त होता है वो विष्ठा से कितना सुखदायी है, कितना उन्नत वस्तु है, उनको ये पता नहीं चलता। वो सोचते हैं विष्ठा ही संसार में सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। तो ये पशु पक्षियों का जीवन है, पशु पक्षी ये भेद नहीं देख सकते कि कौन सी श्रेष्ठ वस्तु है, किसको ग्रहण करना चाहिए किसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, और जीवन में दुख क्या है सुख क्या है, क्योंकि उनकी चेतना निम्न चेतना है, आवृत चेतना। इसलिए ये पशु पक्षी ये नहीं जान सकते कि वो दुख में है, वो दुख में रहकर भी उसी को सुख मानते हैं। किंतु मनुष्य जान सकता है कि दुख क्या है और सुख क्या है। मनुष्य जीवन में भी ऐसे कुछ मनुष्य हैं जो पशु वृत्ति के हैं, तो ये दुख में होते हुए भी दुख को भी सुख मानते हैं। तो ऐसा मनुष्य पशु जीवन व्यतीत करते हैं, वो नहीं जान सकते कि दुख और सुख में अंतर क्या है। किंतु जो मनुष्य विवेकी पुरुष है, जो जिसका विवेक है, जो भेद देख सकता है कि दुख और सुख में क्या अंतर है, तो वही व्यक्ति दुख से मुक्त होने का प्रयास कर सकता है, दूसरे लोग नहीं कर सकते। तो यहां ऐसे लोगों का वर्णन भगवान कपिल देव माता देवहूति के सामने करते हैं, जो मनुष्य विवेक शून्य होकर इस भौतिक संसार में सुख भोग करने के लिए प्रयास करते हुए वस्तुतः दुख भोग करता है, किंतु वह जान नहीं सकता। तो कहते हैं कि वार्तायं लुप्यमानायं आरब्धायं पुनः पुनः, इस भौतिक संसार में जीवन धारण करने के लिए मनुष्य वार्ता या एक पैसा ग्रहण करता है, एक धंधा ग्रहण करता है अर्थ प्राप्ति के लिए, जिससे कि वो सोचता है कि अर्थ प्राप्त करने पर वो उसका जीवन सुखमय हो सकता है। किंतु इस पैसा में कभी कभी वो सफल होता है, कभी कभी विफल भी होता है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी प्रार्थना में कहा है, भगवान को प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा इस संसार के लोगों की स्थिति के बारे में, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्लेश भूयर अल्पसाराण, इस संसार में लोग बहुत क्लेश करते हैं, परिश्रम करते हैं, अर्थ प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, क्लेश भूय अधिक परिश्रम करते हैं, किंतु उसका परिणाम क्या होता है, अल्प सारण, कठोर परिश्रम का ये लोग अल्प फल प्राप्त होते हैं, अथवा कर्माणि विफलानि वा, अथवा उनका कर्म या सारा परिश्रम विफल हो जाता है, कोई फल नहीं मिलता है, या तो थोड़ा सा फल मिलता है या कोई फल नहीं मिलता है। तो इस भौतिक संसार में जो कर्मीजन है, जो अर्थ प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, ये कठोर परिश्रम का या तो वो अल्प फल प्राप्त होते हैं या कोई फल प्राप्त नहीं होते, यही उसका परिणाम है, कठोर परिश्रम का परिणाम है। देहिनां विषयार्तानम, तो ये परिणाम कौन प्राप्त होता है ना, देही, जो अपने को जो देह में स्थित है, किंतु विषयार्तानम विषय भोग के प्रति आकृष्ट है, विषय के प्रति आर्त है, विषय भोग के लिए व्याकुल है, इंद्रिय विषयों को भोग करने के लिए जो व्याकुल है, ऐसा व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है और उसका फल स्वरूप या तो थोड़ा सा फल प्राप्त होता है या उसका सारा कर्म विफल हो जाता है, यही कठोर परिश्रम का फल। किंतु न तथैव अर्पितम त्वयि, किंतु हे प्रभु, जो आपके चरणों में पूर्ण समर्पित भक्त है, जो कर्मी जनों की तरह कठोर परिश्रम नहीं करते हैं, तो ऐसे भक्तजन कम परिश्रम करते हैं, जो भगवान के चरणों में जिनका जीवन अर्पित है, उनका जीवन कर्मी जनों के जीवन से संपूर्ण विपरीत है। कर्मी जन कठोर परिश्रम करते हैं, अल्प फल को प्राप्त होते हैं या उनका कर्म विफल हो जाता है, कोई फल प्राप्त नहीं होता। किंतु भगवान के चरणों में अर्पित जन, भगवान के चरणों में जो समर्पित व्यक्ति हैं, भक्त हैं, वो कम परिश्रम करता है और अधिक फल को प्राप्त होता है, ये इसका परिणाम है, भगवान की कृपा है ऐसे भक्तों पर जो उनके चरणों में समर्पित हैं। ये काम परिश्रम करते हैं भक्तजन, किंतु अधिक फल को प्राप्त होते हैं और उनका परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। यही भेद है कर्मीजन और भक्तों में। जो भगवान के चरणों में समर्पित नहीं होते हैं, वो कठोर परिश्रम करते हैं, अल्प फल को प्राप्त होते हैं या कोई फल प्राप्त नहीं होता। किंतु भगवान के चरणों में समर्पित भक्त कम परिश्रम करता है, अधिक फल को प्राप्त होता है और उसका परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। तो इस प्रकार यहां भगवान कपिल देव ऐसे कर्मियों की स्थिति का वर्णन कर रहा है, जो भगवान के चरणों में समर्पित नहीं है, जो कर्मी जन है, ये लोग पैसा या धंधा करते हैं अर्थ उपार्जन करने के लिए, और आरब्ध जब वो उसमें विफल हो जाते हैं, जीविका जब ग्रहण करते हैं और कठोर परिश्रम करते हैं उसमें विफल होते हैं, उनका परिश्रम विफल हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, आरब्धायं पुनः पुनः, वो बार बार प्रयास करते हैं कि परिश्रम का फल कैसे प्राप्त करें, कैसे अधिक से अधिक धन प्राप्त करें, वो बार बार प्रयास करते हैं। कभी कभी भक्तों को ये शिक्षा लेनी चाहिए ऐसे कर्मियों से कि कर्मीजन बार बार विफल होने पर भी कैसे प्रयास जारी रखते हैं, क्योंकि उनमें एकमात्र उद्देश्य होता है कि कैसे धन की प्राप्ति करें, कैसे फल की प्राप्ति करें। तो उसी प्रकार भक्तों को भी ऐसा परिश्रम करना चाहिए, बार बार कृष्ण की कृपा प्राप्त होने पर, विफल होने पर भी या भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होने पर भी कभी भी हम धैर्यच्युत ना हो, हम धैर्य से च्युत ना हो, हम धैर्य धारण करें। जिस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी ने बताया कि भक्तों को हर समय धैर्य धारण करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भक्तों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने इतने दिनों से भगवान की सेवा हम कर रहे हैं और अभी तक भगवान की कृपा हम पर नहीं हुई है, तो ये भगवान की सेवा करने से क्या लाभ है, और कहीं किसी देवी देवता की पूजा करें, भगवान को छोड़ दें, ऐसा भक्त को कभी भी नहीं सोचना चाहिए। उत्साह निश्चय धैर्य, भक्त को सदा सर्वदा उत्साहित होकर भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए और निश्चयता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए और धैर्य धारण करना चाहिए कि कभी न कभी भगवान की कृपा अवश्य हम पर होगी। तो कभी ये धैर्य को नहीं त्यागना चाहिए, जैसे कर्मी लोग धैर्य को नहीं त्याग रहे हैं, फल की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं, तो उसी प्रकार भक्त को बार बार प्रयास करना चाहिए। भूमौ स्खलित पादानं भूमिरेवावलंबनम्, त्वयि जात अपराधानं तमेव शरणं प्रभु। तो भक्त इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करता है कि भूमौ स्खलित पादानं भूमिरेवावलंबनम्, जिस प्रकार व्यक्ति भूमि पर चल रहा है उसका पैर फिसल जाता है तो उसको सहारा कौन देता है, वही भूमि ही सहारा देती है। जिस भूमि पर चलकर उसका पैर फिसल गया है, वो गिर गया है, उसके लिए सहारा वही भूमि है। तो उसी प्रकार भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि त्वयि जात अपराधानं तमेव शरणं प्रभु, हे प्रभु जाने अनजाने आपके चरणों में मेरा यदि कोई अपराध हो गया है तो आप ही मेरे आश्रय हैं, आपके अतिरिक्त इस संसार में मेरा कोई आश्रय नहीं है। आपके चरणों में बार बार अपराध करने पर भी आप ही मुझे क्षमा करेंगे, आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, आपके अतिरिक्त इस संसार में मैं और कहीं कोई आश्रय नहीं देखता, इसलिए आप ही मुझे क्षमा कीजिएगा, आप ही मेरे पर कृपा कीजिएगा। तो भक्त इस प्रकार भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है, उन्हीं के शरणों में जाता है। जबकि कर्मीजन हम देखते हैं कि बार बार प्रयास करते हैं उस फल की प्राप्ति के लिए, और लोभाभिभूत निसत्व, जब वो फल को बार बार प्रयास करने पर भी जब वो फल को प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थ को प्राप्त नहीं होते हैं और इस प्रकार सर्वस्वांत हो जाते हैं, उनका सब कुछ खो जाता है। ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी व्यक्ति का सारे द्वार बंद हो जाते हैं, उसका धन नष्ट हो जाता है, वो कहीं किसी तरह प्रयास करता है फिर भी कहीं से भी उसको धन की प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार कभी कभी वो बहुत कष्ट में रहता है, इसलिए खाने के लिए भी उसको नहीं मिलता है खाद्य। ऐसा देखा जाता है कि कभी व्यक्ति बहुत अच्छा उसका चल रहा था और बिजनेस पैसा चल रहा था और अचानक सब कुछ बदल गया और अचानक वो सर्वस्वांत हो गया। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो लोभाभिभूत यही संसार है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। तो लोभाभिभूत तो इससे व्यक्ति क्या करता है, वो लोभ से अभिभूत हो जाता है, धन प्राप्त करने का लोभ उसका बढ़ जाता है। जितना वो कष्ट में होता है वो चाहता है किसी तरह, चाहे चोरी करके हो, लूट करके हो, किसको किसी का वध करके हो, किसी भी तरह धन संग्रह करे। लोभ बस वो कोई पाप काम करने के लिए पश्चातपद नहीं होता, पाप काम कार्य करने के लिए वो आगभर हो उठता है। इसलिए कहते हैं परार्थे कुरुते स्पृहाम। तो भगवान कपिल देव कहते हैं ऐसा व्यक्ति दूसरों का अर्थ प्राप्त करने के लिए इच्छा करता है, कैसे चाहे किसी भी तरह, मांग करके, चोरी करके, लूट करके, किसी भी तरह उसका अर्थ प्राप्त करे। केवल अर्थ प्राप्त करना उसके जीवन का लक्ष्य रह जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जब इस प्रकार की स्थिति में होता है वो अर्थ से वंचित हो जाता है, अर्थ किसी भी तरह प्रयास करके अर्थ की प्राप्ति नहीं कर सकता, तो उस समय वो अपने कुटुंब या परिवार को चलाने में असमर्थ होता है, परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता। कुटुंब भरण अकल्पो मंद भाग्यो वृथोद्यम। तो इस प्रकार जो हतभागा व्यक्ति हैं, मंदभागा अर्थात हतभागा जिसका भाग्य मंद है, ऐसे व्यक्ति वृथोद्यम, वृथा उद्यम करता है, चेष्टा करता है, बार बार चेष्टा करके विफल होता है और बार बार चेष्टा करके विफल होकर अपने कुटुंब का, परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता, असमर्थ होता है भरण पोषण करने में, जिसके कारण श्रिया विहीन, वो श्रिया अर्थात सौंदर्य और श्री का अर्थ लक्ष्मी भी अर्थात धन, तो ये दो अर्थ होता है श्री का, श्री सौंदर्य, श्री अर्थ। तो श्रिया विहीन कृपण, तो जो व्यक्ति अर्थ विहीन हो जाता है इसलिए वो सौंदर्यहीन भी हो जाता है। मान लीजिए कोई कुरूप व्यक्ति है किंतु उसके पास अधिक धन है तो लोग उसी को पसंद करेंगे, उसके पास आसपास मंडराएंगे यही सोच करके कि उससे कुछ धन प्राप्ति हो जाए, तो उसका धन ही उसका सौंदर्य है वस्तुतः। जब व्यक्ति धनहीन हो जाता है तो उस समय सारे लोग उसको त्याग करके चले जाते हैं, दूसरे लोग तो दूसरे लोगों को त्याग करके जाना तो स्वाभाविक है, यहां तक कि अपने लोग भी उसको त्याग देते हैं। जिसका आएगा अगले श्लोक में भगवान कपिल देव बता रहे हैं कैसे अपने लोग उस व्यक्ति को त्याग करते हैं। तो कहते हैं सिया विहीन कृपणो ध्यायं छोसिति मूढ़धि। तो ये जो मूढ़ है, मूर्ख व्यक्ति है जिसकी बुद्धि दूषित हो गई है, जो बुद्धिहीन हो गया है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति जिसको कृपण कहा गया है। ये कृपण क्या क्यों है? कृपण के दो अर्थ तो जैसे बताया गया है कि स्वल्पं बीतं क्षतिं न क्षमते सह कृपण। एक तो वह व्यक्ति कृपण है जो थोड़ा सा भी बीत क्षति अर्थात धन की हानि को सहन नहीं करता है, उसको क्षमा नहीं देता है। कोई धन हानि कर दिया उसको क्षमा नहीं करता तो ऐसे व्यक्ति को कृपण कहा जाता है। थोड़ा सा भी धन की हानि हो गई तो सहन नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति को कृपण कहा गया। और दूसरा व्यक्ति को भी कृपण कहा गया है, जिस प्रकार याज्ञवल्क्य ऋषि गार्गी को बता रहे हैं कि कौन कृपण है वस्तुतः संसार में। एक तो जो व्यक्ति धन हानि को सहन नहीं करता वो कृपण है, किंतु याज्ञवल्क्य ऋषि बृहत आरण्यक उपनिषद में गार्गी को बता रहे हैं कि कृपण की वास्तविक परिभाषा क्या है। तो कहते हैं कि यो वा एतत् अक्षरं गार्गी अविदित्वा, तो हे गार्गी, जो भी व्यक्ति इस अक्षर जो क्षर नहीं है, इस संसार में हर वस्तु क्षर है, क्षयशील है, नाशवान है, किंतु जो नाशवान नहीं है उसको अक्षर कहा गया है, जो क्षय नहीं होता है। तो संसार में ऐसा कौन सी वस्तु है जो क्षय नहीं होता? तो यह संसार में हर वस्तु क्षयशील है, विनाशशील है। जो भी भूत प्रकृति से बनी हुई वस्तु क्षयशील है, किंतु जो भूत प्रकृति से नहीं बनी है वो अक्षर है, अक्षय है, विनाशशील नहीं है। जो आत्मा इस शरीर में स्थित है वो विनाशशील नहीं है, वो दिव्य है। और वो आत्मा जिसका अंश है, जो भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है, भगवान भी दिव्य है, अविनाशी है। जिस प्रकार भगवान नित्य अविनाशी, उसी प्रकार उनके अंश स्वरूप आत्मा भी नित्य और अविनाशी है, वो क्षयशील नहीं। तो जो व्यक्ति कहते हैं जो वा एतत् अक्षरं गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयति सह कृपणः, तो कहते हैं कि हे गार्गी, जो व्यक्ति संसार में इस अक्षर वस्तु को, इस अविनाशी वस्तु को न जानकर इस लोक से चला जाता है, वही व्यक्ति वस्तुतः कृपण है। तो इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा को नहीं जानता है, आत्म तत्व को नहीं जानता है, पर तत्व को नहीं जानता है, वही व्यक्ति वस्तुतः कृपण है। इसलिए भगवत गीता में भी अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषो परत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेत यश्रेयसानिश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मंतं प्रपन्न। अर्जुन भी अपने को कृपण कह रहे हैं क्योंकि अपने धर्म को निश्चित नहीं कर पा रहा है कि मेरे लिए क्या श्रेय है, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, इसका निर्णय नहीं कर पा रहा है, इसलिए अपने को कृपण कर रहा है। वस्तु तो वही व्यक्ति कृपण है जो अपने धर्म को निश्चित नहीं कर पाता है कि उसके लिए क्या करना सही है, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। जो व्यक्ति अपने आत्म तत्व को समझ लेता है वो व्यक्ति अपने धर्म को निश्चित कर सकता है, अपने जीवन के लक्ष्य को जान सकता है, वो कभी भटक नहीं सकता और वही व्यक्ति अंत में भगवान को प्राप्त कर सकता है। किंतु जो व्यक्ति संसार में केवल अर्थ को ही जीवन का लक्ष्य मानता है, कुटुंब भरण पोषण करने को ही जीवन का लक्ष्य मानता है, और ऐसा लोग संसार में अधिक है जो सोचते हैं कि जीवन में अधिक से अधिक अर्थ उपार्जन करके यदि किसी ने परिवार का भरण पोषण कर लिया तो वो अपने को समर्थ पुरुष मानता है, वो सोचता है कि उसका जीवन सफल हो गया। किंतु वो नहीं जानता कि उसका जीवन कैसे विफल हो गया, क्योंकि परिवार का भरण पोषण केवल मनुष्य नहीं करता है, पशु पक्षी भी करते हैं। तो पशु पक्षियों से मनुष्य किस दृष्टि से श्रेष्ठ हुआ? किसी भी दृष्टि से वो श्रेष्ठ नहीं, वो मनुष्य रूपधारी पशु मात्र रह गया। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता उसकी स्थिति के बारे में हम क्या कहें? तो भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि श्रिया विहीन कृपण, यह व्यक्ति कृपण है क्योंकि इसने आत्म तत्व को जानने के लिए जीवन में कभी प्रयास नहीं किया है, इसलिए यह व्यक्ति कृपण है। केवल अर्थ को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया है और उसमें विफल हो गया है, और उसका परिणाम क्या है? स्वस्थिति मूढ़। ऐसा व्यक्ति बार बार अपने कर्म फल को अनुभव करते हुए, कर्म फल का अनुभव करते हुए, अपनी स्थिति का अनुभव करते हुए बार बार दीर्घ श्वास छोड़ता है, दुख में दुखी होकर वो आहें भरता रहता है, दीर्घ श्वास छोड़ता रहता है। क्या हो गया, मैं अब क्या करूं, किं कर्तव्य विमूढ़, अब क्या करेगा वो नहीं जान सकता, अपना कर्तव्य का निर्धारण नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं किं कर्तव्य विमूढ़, किं करोमि, कहां जाऊं, क्या करूं, समझ नहीं सकता, और बार बार इस प्रकार दीर्घ श्वास छोड़ता। तो फिर आगे कहते हैं कि एवं स भरणा अकल्पम तत्कलत्रादयस्तथा, और इस प्रकार का व्यक्ति जब अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता तो परिवार वालों की प्रतिक्रियाएं क्या होती है, भगवान कपिल देव उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि यह जानना बहुत आवश्यक है, संसार से विरक्त होने के लिए यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति इस स्थिति को नहीं जान सकता, इसलिए वृद्ध होने तक परिवार में ही लगा रहता है, परिवार में आसक्ति उसकी बनी रहती है, परिवार का त्याग नहीं कर सकता। युवावस्था में जब था उस समय सोच रहा था कि जब हम वृद्ध होंगे तब हम भगवान का भजन करेंगे, अभी युवावस्था भोग का समय है, उसने भोग किया जीवन को, और वृद्धावस्था भी उपस्थित हुई फिर भी आसक्ति अभी तक उसकी टूटी नहीं, अभी भी आसक्ति बनी हुई है, भगवान की ओर मन नहीं जा रहा है, भगवान के प्रति आसक्त नहीं हो रहा है। वृद्धावस्था में स्थित व्यक्ति वही घर परिवार में, जबकि घर वाले नहीं चाहते हैं फिर भी लगा हुआ है। तो कहते हैं कि एवं स्वभरणाकल्पम, परिवार के भरण पोषण में असमर्थ तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते। जब व्यक्ति परिवार का भरण पोषण कर रहा था तब हर कोई परिवार के लोग उसका आदर करते थे, स्त्री आदर करती थी, पुत्र कन्याएं आदर करते थे, आत्मीय स्वजन भी आदर करते थे, क्योंकि पास में धन था, धन कमा रहा था। अब वो धन नहीं कमा पा रहा है, परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, तो नाद्रियंत, पत्नी आदर नहीं कर रही है, पुत्र कन्या आदर नहीं कर रहे हैं, आत्मीय स्वजन भी आदर नहीं कर रहे, यही उसकी स्थिति बदल गई। जब वो धन कमा रहा था हर कोई आदर करता था, अब धन नहीं कमा रहा है कोई आदर नहीं कर रहा, फिर भी उसका मोह नहीं टूटा है परिवार से, फिर भी वो सोच रहा है कि ये मेरी पत्नी, ये मेरे बाल बच्चे हैं, ये मेरे आत्मीय स्वजन हैं, इनको छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, चाहे वो आदर करे या न करे यही पड़ा रहूं। उसका मोह नहीं टूटता। तो एक उदाहरण दे रहे हैं भगवान कपिल देव, कहते हैं कि नाद्रियंत यथा पूर्वम किनाशा इव गोचरम, तो ये पत्नी और पुत्र कन्याएं पूर्ववत आदर नहीं करते हैं, उसी प्रकार आदर नहीं करते हैं जिस प्रकार किनाशा इव गोचरम, कि किनाशा अर्थात किसान, कृषक, कृषक जिस प्रकार गोजरम अर्थात बैल, कृषकों का, किसानों का बैल से काम है, वो बैल से कृषि का कार्य करते थे। आजकल अवश्य कृषक गो के स्थान पर ट्रैक्टर ले लिए हैं इसलिए गोपालन से मुक्ति ट्रैक्टर का पालन कर रहे हैं, तो किंतु पूर्व काल में कृषक बैलों के द्वारा कृषि कार्य करते थे। तो ये कृषि कार्य में बैलों का उपयोग होता था, और जबकि आजकल कृषक लोग ट्रैक्टर का व्यवहार कर रहे हैं तो बैलों को कंसाई खाना में बेच देते हैं, यही स्थिति है आजकल की। तो जिस प्रकार कृषक बैलों का उपयोग करता है कृषि कार्य करने में, और जब तक बैल कृषि कार्य करने में उपयुक्त हैं उनका आदर करता है, उनका पालन पोषण अच्छी तरह करता है, किंतु जब बैल वृद्ध हो जाता है और कृषि कार्य करने में असमर्थ होता है तो कृषक का आदर उस वृद्ध बैल के प्रति नहीं रहता, और उसका इतना आदर नहीं करता है या उसका पालन पोषण उस ढंग से नहीं करता है जैसे पहले कर रहा था। तो यह उदाहरण सर्वथा उपयुक्त है एक वृद्ध व्यक्ति के लिए जो घर में अभी तक पड़ा हुआ है, घर का मोह जिसका भंग नहीं हुआ है, यद्यपि घर के लोग उसका अनादर करते हैं, और कभी कभी वो वृद्ध व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, और कभी कभी ये कहने भी लगते हैं ये क्यों जल्दी नहीं मरता है, हम लोगों को परेशान करता रहता है कभी कभी उनके मुख से ये निकल भी आता है कि जल्दी मर जाए ये वृद्ध व्यक्ति, हम लोगों को बहुत परेशान किया है, करता रहता है। तो ये स्थिति है, और वृद्ध व्यक्ति ये सब सुनता रहता है, वो देखता है कि ये लोग पहले मेरा आदर कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, जिसको कभी आदर मिला है और आदर मिलने के उपरांत उसका अनादर हो रहा है तो वो मृत्यु के समान है व्यक्ति के लिए, कोई आदर कर रहा था, सम्मान कर रहा था, अभी अनादर असम्मान कर रहा है तो वो व्यक्ति के लिए मृत्यु के समान है। किंतु फिर भी वो वृद्ध व्यक्ति जो आदर प्राप्त कर रहा था अनादर को प्राप्त होने के उपरांत भी वो गृहत्याग करने के लिए नहीं सोचता, इतना आसक्त है गृह के प्रति और परिवार वालों के प्रति, जबकि वो उसका अनादर कर रहे हैं। और केवल इतना नहीं, वो अनादर करते हैं और कभी कभी वृद्ध व्यक्ति बीमारी भोग करता है, रोगग्रस्त हो जाता है, तो उसकी सेवा भी ठीक ढंग से नहीं करते, फिर भी वो उसी तरह घर में पड़ा रहता है और घर वाले जो कुछ देते हैं खाता रहता है, किंतु भगवान का भजन कभी भी नहीं करता, भगवान की ओर कभी भी उन्मुख नहीं होता है, उसको ये सुबुद्धि नहीं आती, इतना हतभागा है। जिस प्रकार धृतराष्ट्र अपने सब संतानों को युद्ध में हराकर फिर भी गृह सुख के प्रति आसक्त थे, जिन पांडवों को मारने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा था उन्हीं पांडवों के आश्रय में धृतराष्ट्र रहे, इतने आसक्त थे राज सुख के प्रति, उसको त्याग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए विदुर जी को आना पड़ा, धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र की रक्षा करने के लिए विदुर जी जो तीर्थाटन में गए थे वो आकर धृतराष्ट्र को उन्होंने उपदेश के माध्यम से वास्तव में उन्होंने भर्त्सना की उनकी, उन्होंने धृतराष्ट्र से इतनी भर्त्सना की, और इस भर्त्सना का उद्देश्य था धृतराष्ट्र के मोह को काटना, घर के प्रति या सांसारिक सुख के प्रति जो आसक्ति बनी हुई है ये इतनी तीव्र है कि उसको केवल गुरु ही काट सकता है भर्त्सना करके, नहीं तो व्यक्ति का मोह नहीं टूटता है। तो विदुर जी गुरु बनकर धृतराष्ट्र की उन्होंने भर्त्सना की, तीव्र भर्त्सना, उन्होंने कहा कि आप ये पांडवों के घर में कुत्ते के समान पड़े हुए हैं, और जिस प्रकार कुत्ते जूठन खाते हैं आप उसी प्रकार भीम का जूठन खा रहे हैं, और इसी में आप आनंद ले रहे हैं, आपको तुरंत ये गृह त्याग करके, राज सुख को त्याग करके वन में जाकर भगवान का भजन करना चाहिए, इससे अच्छा है कि आप वन में रहे, जहां अनादर हो रहा है वहां रहना उचित नहीं है। वस्तुतः यही बात प्रयुज्य है वृद्ध लोगों के लिए जो घर के प्रति वृद्धावस्था में भी आसक्त है, इसलिए हमारे शास्त्रों में 50 वर्ष तक गृहस्थाश्रम में रहकर उसके उपरांत गृहस्थाश्रम में, गृहस्थाश्रम से विदा लेकर वृंदावन में आकर भगवान का भजन करने के लिए कहा गया कि व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री हो 50 वर्ष के उपरांत और घर में नहीं रहना चाहिए, बच्चों को छोड़ देना चाहिए, वो अपना घर संभाले, वृंदावन में आकर भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य। तो श्रील प्रभुपाद ने इस उद्देश्य को हमें बताने के लिए वृद्धावस्था में सारे संसार में उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और हमें वस्तुतः मार्ग प्रदर्शन किया, और इस मार्ग का लाभ हमें उठाना चाहिए कि घर द्वार छोड़ के यहाँ वृंदावन एक बार आने के उपरांत फिर घर की बात नहीं सोचना चाहिए या घर में लौट जाना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसे गृहस्थ हैं घर द्वार छोड़कर आए हैं वृंदावन, फिर भी घर में मन लगा हुआ, घर के बारे में सोचते हैं, फोन पर बात करते रहते हैं और कभी कभी लौट भी जाते हैं घर पर। ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बार भगवान के आश्रम में आए तो यहीं पड़ा रहना चाहिए, चाहे कितना भी कष्ट हो, घर के कष्ट से अच्छा है कि वृंदावन में हम कष्ट सहन करें और भगवान के धाम में रहें, भगवान की सेवा में लगे रहें। हरे कृष्णा, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय गौर भक्त वृंद की जय। नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।